ऑस्ट्रेलिया में पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जो वीजा दिए जाते हैं उनमें से सबसे प्रतिष्ठित वीजा कैटेगरीज में से एक है स्किल्ड नॉमिनेशन कैटेगरी वीजा, जिसे सब क्लास 189 भी कहते हैं। इस वीजा के तहत आपको केंद्र की ओर से ऑस्ट्रेलिया का पीआर दिया जाता है, जिसके तहत आप कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। बहुत कम लोगों को और बहुत स्किल्ड लोगों को ये वीजा मिलता है, लेकिन पिछले एक साल से ऐसे लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है जिन्हें ये वीजा लेने के लिए इनवाइट तो आ चुका है पर उन्हें वीजा नहीं मिला है। ऐसे कुछ लोगों से हमने बात की है, जिनमें से एक हैं अमन सहगल जो मेलबर्न में रहते हैं। उनका इंटरव्यू आपको सुनवाते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या मुश्किलात से वो गुजर रहे हैं पिछले एक साल से। तो अमन सहगल, बताइए कि आपकी जो जर्नी रही है वो क्या रही है, कब आप ऑस्ट्रेलिया आए थे और तब से अब तक की जर्नी अगर आप हमें थोड़ा सा संक्षेप में बता सकें तो।
मैं ऑस्ट्रेलिया 2016 जुलाई में आया था, यहाँ मोनाश यूनिवर्सिटी में मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने। उसके दो साल के बाद जब मेरी डिग्री खत्म हुई, मैंने थीसिस करी थी, उसके बेसिस पे मुझे बिग डेटा इंजीनियर के रोल में जॉब मिली और अभी एज अ कॉन्ट्रैक्टर मैं कोल्स में काम कर रहा हूँ। दो साल पढ़ाई के टाइम पे और उसके बाद काम करने के बाद मुझे लगा कि मुझे यहाँ रहना चाहिए और उसके लिए मैंने पीआर की प्रोसेस के लिए अप्लाई करना शुरू किया, जो कि जब मैं आया था तो काफी सिंपल था। जैसे 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 मेरा टाइम यहाँ बढ़ता चला गया, वैसे वैसे वो प्रोसेस और डिफिकल्ट होता चला गया और उसके लिए फिर जो और अलग अलग एग्जाम्स थे, जो भी पॉइंट इकट्ठा करने थे, उसके लिए प्रेप में किया और इसी दौरान अराउंड दिसंबर 2018 में मेरी एंगेजमेंट भी हुई जो मेरे इंडिया में जाके हुई और 2019 अक्टूबर में मेरी मैरिज भी हुई है। तो अब बस काम चल रहा है यहाँ पे और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं लिव इन अ हाउस में घर में रहता हूँ जहाँ मेरे साथ काफी इंडियन साथ में रहते हैं। ओकले एक सबब है जो मेलबर्न में है। इसके साथ साथ मेरे नॉर्मल काम के साथ साथ मैं मोनाश में पढ़ाता भी हूँ पार्ट टाइम टीचर जैसे।
अच्छा।
और ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ।
तो आपकी मतलब अभी आपकी पार्टनर आपके साथ नहीं रहती है?
नहीं, वो अभी इंडिया में, मुंबई में।
और आपका जो पीआर का प्रोसेस भी अभी पूरा नहीं हुआ है?
पीआर का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, मतलब कि मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे इनवाइट आया और मैंने इनविटेशन के साथ अपना अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल टेस्ट वगैरह सब मेरे और मेरे वाइफ के, मेरी वाइफ ने इंडिया से अपने सारे मेडिकल टेस्ट और पुलिस चेक वगैरह सब कर दिया। ये सब अप्रैल 2020 में हो गया था और तब से लेकर अभी तक उस पर कोई कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या हो रहा है पीछे।
आपने किस वीजा के लिए अप्लाई किया था अमन?
189 वीजा, स्किल्ड इंडिपेंडेंट पॉइंट टेस्टेड स्ट्रेन।
क्या आपने जानने की कोशिश की होम अफेयर्स से कि क्या हुआ, कहाँ है एप्लीकेशन, उसका स्टेटस क्या है?
जी बिल्कुल, कई बार कॉल किया। जब मैंने शुरू किया था एप्लीकेशन प्रोसेस तो अराउंड शायद 6 से 9 महीने उसमें लिखा था कि प्रोसेसिंग टाइम होगा और ये प्रोसेसिंग टाइम हर महीने चेंज होता जाता है, तो कभी 5 महीने हो जाता है, कभी 12 महीने हो जाता है, कभी लास्ट मंथ 11 to 21 months हो गया था और आज वापस चेंज हुआ है जो उसमें 5 से 18 महीने आया। तो इतना वेरिएशन जब चल रहा था और जब मैंने एप्लीकेशन अप्लाई करी थी तो 6 महीने हो जाने के बाद मैंने इमिग्रेशन से कॉल करके पूछा था कि स्टेटस क्या है, तो उन्होंने ये बोला कि आप ने वीजा प्रोसेसिंग टाइम हमारी वेबसाइट पर चेक करा है क्या? मैंने बोला हाँ चेक किया, तो उन्होंने बोला कि आपका जो एप्लीकेशन है करंट वीजा प्रोसेसिंग टाइम से पीछे है। उस टाइम कुछ 8 से 11 महीने से ज्यादा का टाइम था और ये 9 महीने था और मेरी एप्लीकेशन को सिर्फ 6 महीने हुए थे। तो जब भी कॉल किया तो मैंने ही नहीं, जितने भी मेरे साथ के लोग हैं जो एक फेसबुक ग्रुप में हम लोग एक साथ में हैं, जिसने भी कॉल किया उसको सेम रिस्पॉन्स मिला कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप प्रोसेसिंग टाइम पर जाएंगे।
यानी और लोग भी हैं सेम बोट में आपकी ही के कैटेगरी के जिनको वीजा नहीं मिला है?
जी बिल्कुल।
क्या आपका ऑक्यूपेशन उन 17 ऑक्यूपेशंस में है जो पीएमएसएल जारी की गई थी कि सिर्फ इन लोगों को अब कंसीडर किया जाएगा?
हाँ जी, मेरा ऑक्यूपेशन उसमें है 261313 सॉफ्टवेयर इंजीनियर।
तो अमन, आपको अब क्या लग रहा है कि अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप पूछ चुके हैं, बातें कर चुके हैं, आपके पास क्या स्टेप्स बचते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है आपकी लाइफ पर?
तो जैसे आपने पहले पूछा कि क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे लगभग थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन सा फील होता है, बिकॉज उसका एक कारण ये है। जैसे अगर आप प्रायोरिटीज प्रोसेसिंग वीजा लिस्ट देखेंगे, उसमें जो 17 ऑक्यूपेशंस है उनको तो ठीक है, उसमें मेडिकल वाले जो है, जैसे रजिस्टर्ड नर्स है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, उनके वीजा प्रोसेस हो रहे हैं। साथ में एक और वीजा होता है जैसे 482 है और स्टेट स्पॉन्सरशिप है। तो कई बार ये भी देखा गया है, जैसे जब ऑनलाइन फेसबुक पे कई लोग जिनको वीजा मिलता है तो वो अपनी पूरी स्टोरी डालते हैं कि उन्होंने कब वीजा अप्लाई किया, कैसे मिला। उसमें जैसे कि शेफ है उनको भी मिल रहा है, सोशल वर्कर्स, लेबरर्स, अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं उनको मिल रहा है जिनके ऑक्यूपेशन उस लिस्ट में नहीं है। तो यहाँ पे यह थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आपने जो लिस्ट जारी करी है उसमें कुछ और है, और जो जिनको वीजा मिल रहा है वो तो उस कैटेगरी में भी नहीं है, तो जो लोग है उनको क्यों नहीं मिल रहा है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि इसके आगे क्या रास्ता है, पहली और इसका इम्पैक्ट क्या
इम्पैक्ट
पड़ा है,
क्या
तो
होता है?
इम्पैक्ट
हाँ
इम्पैक्ट बहुत बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, बहुत सीवियर इम्पैक्ट है, इमोशनली, पर्सनली और फाइनेंशियली। पर्सनली इम्पैक्ट ऐसा है कि अब हम लोग जितने भी पुराने वीजा पे थे जब हमने पीआर अप्लाई किया, वो वीजा एक्सपायर हो चुका है और हम अब ब्रिजिंग वीजा पे है। ब्रिजिंग वीजा में कई सारी लिमिटेशंस आ जाती है। आप पहले तो कंट्री छोड़ के नहीं जा सकते ब्रिजिंग वीजा ए पे, उसके लिए आपको अलग वीजा अप्लाई करना पड़ता है, और कोविड के टाइम में ट्रैवल करना वैसे भी बहुत डिफिकल्ट है। मतलब आप इंडिया जा सकते हैं, बट इंडिया से यहाँ वापस आना माइग्रेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज वी नीड इनवर्ड एग्जेम्पशन, और इस वजह से अब कितना टाइम लगेगा अनसर्टेनिटी काफी है। कई लोग जो 24 मंथ से रुके हुए हैं वो जा नहीं पा रहे, इस वजह से अपना अपनी फैमिली से मिल सकते हैं। और अगर आपके एप्लीकेशन पे ऑफशोर एप्लीकेंट्स है, जैसे मैं ऑनशोर हूँ, मेरी वाइफ ऑफशोर है, तो वो भी यहाँ आ नहीं सकती, बिकॉज बॉर्डर क्यों, अगर उनके पास पीआर होता, अगर हमारा पीआर प्रोसेस हो गया होता तो वो वहां से इंडिया से ही अप्लाई करके जॉब्स के लिए अप्लाई करके लिए या यहाँ पे आने के लिए एलिजिबल होती। तो एक फैमिली से नहीं मिल पा रहे है, अलग है। दूसरा इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आप बस एक वेट पे है, नो इन्फॉर्मेशन गिवन कि कब ये प्रोसेस होगा, कब आपको एक सर्टेनिटी आएगी टू मूव ऑन। पर्सनल गोल्स भी काफी होता है, जब आपके पास पीआर आता है आप एक स्टेबल लाइफ के तरफ जाने लगते हैं कि ओके अब आप घर ले सकते हैं या आप कहीं जाके एक एरिया में सेटल हो सकते हैं आप अपने एक जॉब पकड़ के, तो वो काफी सारी चीजें उस पर डिले हो जाती है। दूसरा, जॉब स्विच नहीं कर सकते आप, रीजन बीइंग कई सारी जो कंपनीज है उनमें स्ट्रिक्ट लिखा होता है कि आपके पास पीआर होना चाहिए या फिर सिटीजनशिप होनी चाहिए, और ये तब से हुआ है जब से 457 वीजा स्क्रैप हुआ है। तो इस वजह से आपको ना मिल जॉब मिल सकती है, आप घर भी नहीं स्विच कर पाते, बिकॉज अगर आपको रेंट ज्यादा दे रहे थे पहले अब आपको कम देना है, आप नहीं जा पाते क्योंकि रेंटल एजेंसी भी थोड़ी अनसर्टन होती है कि आप 6 मंथ्स के लिए कमिट कर पाएंगे या ईयर के लिए कमिट कर पाएंगे, तो ये सारे और डिफिकल्टीज मतलब बढ़ती चली जाती है।
चलिए अमन, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, उम्मीद है जल्दी ही आपके सपनों के रास्ते भी खुलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर
जरूर
स्पेयरिंग टाइम। अमन सहगल और अन्य मामलों पर हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी सवाल पूछे, उनका जवाब है कि इस वित्त वर्ष में 6,500 लोगों को सब क्लास 189 वीजा दिया जाना है और सरकार उन लोगों को लगातार वीजा दे रही है जिन्हें ऑस्ट्रेलिया की कोविड रिकवरी के लिए और ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 2020-21 माइग्रेशन प्रोग्राम में मंत्री जरूरत के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों के हिसाब से अपने विवेक के आधार पर बदलाव भी कर सकते हैं। ये पूरा जवाब और ये पूरी कहानी आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, पता है www.sbs.com.au/hindi।